साइबर थ्रेट्स जो तकनीकी विकास के साथ जुड़े होते हैं वो अक्सर काम करने वालों इंटेलिजेंस सर्विसेज से एक कदम आगे ही होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने 2014 में पाया कि लगभग 1.6 मिलियन से अधिक ऑस्ट्रेलियन साइबर धोखे का शिकार हुए और इसकी पहचान करने में भाषा की रुकावट, भाषा संबंधी समस्याएं इसमें एक महत्वपूर्ण बाधा बनती हैं। तो साइबर स्पेस के क्या खतरे हैं और हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी यानी प्राइवेसी ऑनलाइन पर कैसे सुरक्षित रखें, इसी पर एक रिपोर्ट। ऐसा कहा गया है कि 2019 तक एक आम ऑस्ट्रेलियन के घर में इंटरनेट के साथ 24 डिवाइसेस कनेक्ट हुई होंगी। अब एक वर्ष में साइबर क्राइम लगभग $1 बिलियन तक का है, इसलिए इसके बारे में ध्यान देने, जागरूकता फैलाने और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार की एक प्राथमिकता बन रही है। इंटरपोल ने दो तरह के साइबर क्राइम की पहचान की है। पहला एडवांस्ड, जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर हमले हैं, और दूसरा फ्रॉड, बच्चों के साथ अपराध और इंटरनेट से फैलता आतंकवाद। जटिल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला ये अपराध ये जानने में मुश्किल खड़ी कर देता है कि इसका अगला निशाना कौन है। फिर भी कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में एशिया पैसिफिक क्षेत्र के तकनीकी डायरेक्टर रिचर्ड डेविस कहते हैं,
The sort of targets that they go after depend a lot on the business breakdown for a particular region. So obviously in Australia, you've got more mining concerns than you have, say, in the United Kingdom. So for example, mining sector may see a large number of attacks before organizations bid for raw materials such as iron ore and so on to give the bidders a competitive advantage. But from an end user perspective and a sort of small, medium-sized business perspective, I think there's really no difference.
हाल ही में यूरोपियन यूनियन की कानून लागू करने वाली एजेंसी यूरोपोल ने इंटरनेट से संचालित अपराध खतरे पर एक रिपोर्ट जारी की। ये बताती है कि जनता पर, प्राइवेट नेटवर्क पर ये खतरनाक हमले बहुत ही निर्मम हैं। अभी मनोवैज्ञानिक विकार एक नया साइबर क्राइम बनकर उभरा है, श्री डेविस बताते हैं।
Basic scams, they call them, one of them the love scam, where someone pretends to be a boyfriend effectively and then requests money, and then quite often the individual can get sucked into it, slowly develops over time, and they end up giving out a large amount of money, so several hundred thousand dollars sometimes.
Europol ki report se pata chalta hai ki aise kai maamle badh gaye hain jisme ek jhoothe link bheje jate hain, usse unki vyaktigat jankari prapt ki jati hai. मेलबर्न के साइबर सिक्योरिटी हब के डायरेक्टर ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस स्टैट्स फिल्मस्टिंस्की बताते हैं,
Someone would encrypt all your documents, all your family photos, and then ask some not very high amount of money to decrypt it and get it back to you. A lot of people, they would pay because entire family history could be wiped out.
स्टार्स कहते हैं कि इसे रोकने के लिए अपना स्वयं का सामान्य ज्ञान यानी कॉमन सेंस प्रयोग करना चाहिए।
Like in, you know, in real life, if something is too good to be true, that's most probably an attempt to defraud you. If someone will come to you and tell this is, I know the place where for $100 they will give you the latest iPhone, you would not probably walk in that dark alley. If you get similar email from absolutely unknown place, you shouldn't be clicking on any links or running any files coming there.
साइबर बुलिंग भी एक अन्य तरह का अपराध है जो आज की दुनिया में एक कटु सच्चाई है। ऑस्ट्रेलिया में 4 में से 1 यानी 1/4 छात्रों के साथ ऑनलाइन बुलिंग होती है, ये बताती हैं प्रोजेक्ट रैकेट के प्रोग्राम की प्रमुख कैटलिन वुड। प्रोजेक्ट रॉकेट एक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है जो साइबर बुलिंग से निपटने के लिए स्कूल वर्कशॉप्स चलाता है। इस प्रोग्राम की प्रमुख कैटलिन वुड बताती हैं,
We have a team of incredible presenters that go into school each day and work with students in coming up with credible strategies to deal with hate online. But we're only a small team, so we, you know, we do service the entire country, the whole of Australia. But you know, we'll often get many requests from, you know, across the country, you know, to go work in these communities.
ادھر کانٹیکسٹ انفارمیشن سیکیورٹی کے رچرڈ بزنسز کے ساتھ کام کر کے سائبر کرائم کے پرتی جاگرکتا پھیلاتے ہیں.
The results that we found have been quite interesting. For campaigns that are conducted every sort of two or three months, there is an increase in awareness and therefore a decrease in the number of users interacting with these emails. But if you wait a whole year and run the similar exercise again, the results are almost exactly identical to the original one, indicating that the users haven't really increased any awareness or if they've just forgotten it over time.
جب انگلش آپ کی بھاشا نہ ہو تو سائبر کرائم کو سمجھ پانا ایک اور اترکت چنوتی ہوتا ہے. اسٹیٹس فلمسکی نے حال ہی میں میلبرن کی رشین جوئش کمیونٹی گروپ کے ساتھ ایک ورک شاپ کی. وہ کہتے ہیں کہ سکشا ہی اس کی کنجی ہے.
It is very important for non-English speaker and migrant communities to get educated around cyber safety, cyber security. The society around us doing so much business online, doing it unsafe or not doing it will only increase the disadvantage that those communities may face in life. If we can help to educate them and to keep them safe online, that will bring benefits to everyone.
یہ صحیح ہے کہ آن لائن پر کچھ تو ویکتیگت جانکاری دینی ہی پڑتی ہے, تو اس کے لیے ریچرڈ کہتے ہیں,
From an end user perspective, I would say that the most important thing is probably to have a healthy skepticism when it comes to interacting with emails, phone calls, etc. There are a few good sources of information online that list sort of the most common scams that are happening at the moment. The other one, to be honest, keep software up to date. It doesn't always help, but it generally does protect against things like the watering hole attack, where you're visiting a common website which has been hacked, which will then look to target plugins and vulnerabilities in your web browser.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویکتیگت جانکاری کہیں لے لی گئی ہے تو آسٹریلین انفارمیشن فار اسسٹنس کو 1300-363-992 پر سمپرک کریں. اس کے علاوہ اسٹے اسمارٹ آن لائن پر یعنی www.staysmartonline.gov.au پر سائبر کرائم اور اس سے سمبندھت بھاشا اور پریوگ ہونے والے شبدوں آدی کے بارے میں پتہ لگائیں.